पृष्ठ संख्या 53 अध्याय 9 स्वास्थ्य और शिक्षा। यो तो हमारा शिक्षा क्रम 200 से भरा है, लेकिन हमारे विचार में इसमें सबसे बड़ा दोष जो है वह इसकी स्वास्थ्य की ओर से उदासीनता है। आदमी के लिए दुनिया में जिंदा रहने और काम करने के लिए जियोमेट्रिक और इतिहास और सैकड़ों फालतू विषयों की इतनी जरूरत नहीं जितनी इस बात की कि हम कैसे स्वस्थ रह सके। नतीजा यह हो रहा है कि हम अपने मस्तिष्क का कोष तो भर लेते हैं, लेकिन स्वास्थ्य की ओर से लिए हो जाते हैं। हमारे अधिकतर शिक्षित लोग चलते फिरते रोग हैं। किसी को अजीर्ण का रोग है, किसी को धड़कन का, और डायबिटीज तो इतना व्यापक हो गया है कि कुछ न पूछिए। इसका कारण यह नहीं है कि बचपन में हमको स्वास्थ्य का महत्व नहीं समझाया गया और हम में ऐसी आदतें डालने की चेष्टा नहीं की गई है कि हम अपनी सेहत की रक्षा कर सकते, और जवान या अधेड़ होने पर जब सेहत और तंदुरुस्ती का महत्व समझ में आया तो सूखे धान में पानी डालने से क्या हो सकता है। अब लाख ओकासा खाइए या पीजिए, लाख विटामिनों के पीछे दौड़िए, सेहत हाथ नहीं आती। हमारे बचपन में मिडिल स्कूलों में तरीके तंदुरुस्ती नाम की एक किताब पढ़ाई जाती थी, जिसमें हवा, पानी, रोशनी आदि पर छोटे छोटे पाठ दिए गए थे, और आज भी हमारी प्राइमरी रीडरों में सेहत संबंधी पाठ दिए जाते हैं, लेकिन बच्चों को वह सबक उसी तरह पढ़ाए जाते हैं जैसे व्याकरण या इतिहास। बल्कि व्याकरण और इतिहास पर ज्यादा जोर दिया जाता है, क्योंकि इन विषयों में फेल हो जाने से लड़के फेल हो जाते हैं। सेहत के पाठ केवल भाषा की दृष्टि से पढ़ाए जाते हैं और उनका जो मुख्य उद्देश्य है उसकी परवाह नहीं की जाती। कुछ तो परीक्षाओं का सिलसिला इतना घातक है कि छात्रों को दम मारने की फुर्सत नहीं मिलती, और कुछ हमारी उदासीनता है जिसके कारण जनता में इस आंदोलन को जोरों से उठाने की सूझती ही नहीं। हमारा लड़का एमए की डिग्री लाए, फिर चाहे वह आंखों की ज्योति क्यों न खो बैठे और मंदाग्नि का रोग क्यों न पाल ले, यह हमारी मनोवृत्ति है। यह विचार आम तौर पर फैला हुआ है कि शरीर और सेहत को बलवान बनाने के लिए घी, दूध, मक्खन और मेवे का होना लाजमी है। हमारे कितने ही युवक अपनी आर्थिक कठिनाइयों से इतने निराश और उत्साहहीन हो जाते हैं कि किसी प्रकार के व्यायाम से उन्हें रुचि नहीं रहती। कसरत से क्या फायदा जब पुष्टिकारक भोजन नहीं मिलता। कसरत तो तब करे जब प्रातः काल बादाम का हलवा और दूध मिले और मेवे मिले, खाने में घी, मलाई और मांस भरपूर मिले। लेकिन उन्हें खबर नहीं, अब दिन दिन विज्ञान द्वारा यह साबित होता जा रहा है कि मामूली सादे खाने में और मामूली साग भाजी में शरीर के पोषण करने की शक्ति किसी तरह भी घी, दूध या मेवे से कम नहीं है। पृष्ठ संख्या 54। हाँ, अगर हम उनका ठीक तौर से व्यवहार करना जाने, अगर हम अज्ञानवश इन पदार्थों का मुफीद हिस्सा फेंक दे तो यह हमारा दोष है, उन चीजों का दोष नहीं। खुशी तो यह देखकर होती है कि विज्ञान भी हमें उसी तरफ ले जा रहा है जिधर हम पहले से चल रहे हैं। हमने नई शिक्षा पाकर गोरी जातियों की नकल में उन चीजों का व्यवहार करना छोड़ दिया जो हमारी भोजन सामग्री को पुष्टिकर बनाती थी, और नई नई सामग्रियों के फेर में पड़ गए थे जिन्हें यूरोप के व्यापारी लंबे चौड़े विज्ञापन दे देकर हमारे सामने लाते थे। यह ओवल्टीन है, यह क्वेकर ओट है, यह माल्टेड मिल्क है, बस सारी दुनिया की पौष्टिक शक्ति इनमें भरी हुई है। जिस युवक को देखिए इन्हीं इश्तिहारी चीजों के फेर में पड़ा हुआ है, लेकिन अब सिद्ध हो रहा है कि हमारे मूली, गाजर और पालक बथुए में जो पौष्टिक पदार्थ मौजूद है वह इन बहुप्रशंसित सामग्रियों में हो ही नहीं सकते। कुछ अमीरी का अभिमान और अपनी रुचि की नफासत भी हमें पथ भ्रष्ट करती है। हम गुड़ नहीं खा सकते जिसमें पुष्टिकर तत्व भरे पड़े हैं, हमें तो शक्कर चाहिए, जितनी साफ हो उतनी ही अच्छी। यह भ्रम फैला दिया गया है कि गुड़ या खांड खाने से फोड़े निकलते हैं। नया चावल भी हम नहीं खाते, हम उसे जितना ही पुराना करके खाएं उतना ही हमारी कल्पना प्रसन्न होती है। वह ऐसा बिखरा हुआ होना चाहिए जैसे बेले का फूल। यह हम भूल जाते हैं कि वह जितना ही पुराना होता जाता है और जितना ही उसका पॉलिश किया जाता है उतना ही निस्तत्व हो जाता है। गेहूं के विस्तार विषय में भी हमें कुछ ऐसे ही भ्रम हैं। हम महीन से महीन मैदा खाना अमीरी की शान समझते हैं, मोटा आटा खाना गवारूपन है और उसका चोकर तो कोई पचा ही नहीं सकता। भला चोकर भी खाने की चीज है, लेकिन अब विज्ञान से सिद्ध हो रहा है कि गेहूं का सबसे बहुमूल्य भाग उसका चोकर है जो हम फेंक देते हैं। दातुन की ब्रश और टूथपेस्ट पर बहुत पहले जीत हो चुकी है, मगर हम अभी तक इस भ्रम में पड़े हुए हैं कि इससे हमारे दांत मजबूत होते हैं। मगर सबसे बड़ा अनर्थ तो उस अज्ञान से होता है जो हमें अपनी इंद्रियों के स्वाभाविक व्यवहार के विषय में है। किशोरा अवस्था में जब यौवन का विकास होने लगता है, हमारे कितने ही बालक अज्ञान के कारण अपनी इंद्रियों का दुरुपयोग करके अपनी सेहत और देह दोनों का ही सर्वनाश कर बैठते हैं। उन्हें बिल्कुल खबर नहीं होती कि वह दुर्व्यसनों में पड़कर अपने जीवन की किस निर्दयता से जड़ खोद रहे हैं। हमारी सभी कर्मेंद्रियां अपने अपने विषय काम के लिए बनी हैं। यदि मुंह का काम हाथ से लिया जाए और हाथ का काम पांव से, तो जिंदा रहना कठिन हो जाए। मगर यही अंधकार है जिस पर प्रकाश डालने का कोई प्रयत्न नहीं किया जाता। अगर हमारे हाई स्कूलों और यूनिवर्सिटियों में योग्य विशेषज्ञों से इस विषय पर भाषण कराया जाए, तो निश्चय ही हमारे विद्यालयों में जो गुप्त रूप से दुराचरण होता है, वह बहुत कुछ कम हो जाए। जरूरत है कि कोई शरीर शास्त्र विद्वान इस विषय पर युवकों के लिए सच्ची शिक्षा से भरी हुई पुस्तक लिख कर शुद्धता का महत्व समझाए। पृष्ठ संख्या 55। उन्हें बताए कि तुम अज्ञान के कारण अपने साथ कितना अत्याचार कर रहे हो। अगर माता पिता स्वयं बालकों को यह ज्ञान दे सकते तो और भी अच्छा होता, लेकिन समाज जिन रूढ़ियों में बंधा हुआ है उनको तोड़ डालना आसान नहीं है, और बहुत से लोग इच्छा होने पर इस झूठे संकोच को नहीं तोड़ सकते। हमारे यहाँ काम शास्त्र संबंधी जो पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, वह इस दृष्टि से नहीं लिखी गई हैं। उनके प्रकाशकों ने समाज के हित के लिए नहीं, धन कमाने के लिए उन्हें प्रकाशित किया है, और ऐसी प्रायः सभी पुस्तकों में सीधी राह दिखाने की उतनी चेष्टा नहीं की गई है जितनी युवकों की गुप्त भावनाओं में गुदगुदी पैदा कर देने की। यह काम कवियों और साहित्यिकों का नहीं है, डॉक्टरों और ब्रह्मचारियों का है। इधर कुछ यूरोप के विद्वान ने इस महान गंभीर विषय के साथ खिलवाड़ करना शुरू किया है और तरह तरह की लचर, भ्रष्ट और गुमराह करने वाली धारणाओं का प्रचार करने लगे हैं। इसीलिए और भी जरूरत है कि इस विषय पर प्रमाणित पवित्र साहित्य छापा जाए। इसके साथ ही विद्यालयों का भी यह कर्तव्य होना चाहिए कि वे अपने बालकों के मस्तिष्क को पाटना ही कर्तव्य की इतिश्री न समझें। उनकी आत्मा, उनके स्वास्थ्य और उनके जीवन का कल्याण भी अपना कर्तव्य समझें। मार्च 1935।